نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة. أما بعد، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور برائیوں سے نکالتے ہیں اور اچھے اچھے جنت والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں. جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو شیطان کا بھی زور اسی قدر اس پر چلتا ہے. کبھی انسان اس چیز سے غافل نہ ہو کہ بس اب شیطان سے جان چھڑ گئی ہے، وہ انسان کے پیچھے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جا کر تزکیے کی منزل شروع کرتا ہے اور اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے، تزکیے سے مراد ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری گناہ سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر باطنی گناہ جو ہیں بہت خطرناک انسان کے، اس سے انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ تزکیہ کر رہا ہے، اپنا تصفف کر رہا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ عاجز حضرت رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا توبہ کے لیے، تو سب سے پہلے نصیحت توبہ کے بعد جو حضرت قصر اللہ نے جو مجھے بتائی، اس وقت شاید سمجھ نہ آئے لیکن بات بہت ہی اہم تھی وہ، اور کی پوائنٹ تھا. ظاہر ہے اس وقت توبہ کی جا رہی تھی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی بھی وعدہ کیے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ایک انسان جو کامل ولی تھا اللہ کا وہ سامنے موجود تھا. تو جب اس حالت انسان ہوتا ہے تو اللہ والے اس کو تمام چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھی ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، ان سے تمہیں بچنا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگی وہ بات عرض کر دوں انشاءاللہ. مجلس اسی لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے اعلان کی اصلاحی مجلس، تو ایسی ایسی بات انسان کرے جس سے انسان کی اصلاح ہو، اچھی بات ہم سمجھ سکیں، عمل کر سکیں، میں بھی اور آپ بھی. میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے حقیقت میں. تو اس مجلس کا تقاضا بھی یہی، ایسی بات انسان کرے. تو حضرت نے جو بات سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی تھی مجھے، تو یہ کہا تھا کہ بھائی اب خیال رکھنا بری صحبت سے بچنا، بری مجلس سے بچنا، بری جگہ سے بچنا. بڑی قیمتی بات تھی، مکمل قرآن حدیث کی بات تھی. کیوں؟ اتنے کامل انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ انسان جب ذکر اذکار میں چلتا ہے، تہجد شروع کرتا ہے، نوافل شروع کرتا ہے، بڑے بڑے چھ عمل شروع کر دیتا ہے، حج عمرے کرتا ہے الحمدللہ، ادھر دین کے کام کرتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، تبلیغ میں بیٹھتا ہے، یہ سب کام شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے انسان نیک بنتا ہے، یہ سارے راستے ہیں. تو اس وقت انسان میں یہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی چلو اب تو میں بالکل صحیح ہوں، मुझ पे क्या असर होगा किसी चीज का। अभी तुम्हारे अभी चिल्ला लगा के आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के पास चला जाऊँ। अभी तुम्हारे दीन का काम करके आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी रात यार इबादत की है, अल्लाह का जिक्र किया है, नेक आदमी सो बैठ के जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है। एक चीज़ आ जाती है आदमी, मैं तो नमाजी हूँ यार, मुझे इस चीज़ से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन खबरदार, एक चीज़ को याद रखें कि जिस कदर अच्छी सुबह से इंसान बदलना शुरू हो जाता है, उसके असरात मरतब होते हैं और नेक बनना शुरू होता है, उससे कहीं ज़्यादा जहर कातिल जो होती है बुरी सोबत है। इंसान किसी मुकाम पर भी पहुंच जाए, किसी दर्जे पर भी पहुंच जाए, अल्लाह उसको वो मुकाम भी दिखा दे कुछ अच्छा सा, तो फिर भी कभी भी किसी हालत में भी बुरी मजलिस में और बुरे दोस्तों के साथ ना बैठे। बड़ी जरूरी चीज़ है, क्योंकि बाद में फिर निकल जाए, फिसल जाता है। ये चीज़ पे असर रखती है, हर हालत में असर रखती है, क्योंकि इरशाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। खुद कुरान कहता है कि सोबत अच्छी हो या बुरी हो, दोनों में असरात है, दोनों में। कितना बुरा इंसान हो, किसी नेक इंसान की सोबत में जाएगा ईशम, उस पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, असर पड़ना शुरू हो जाएगा उसके पास बैठने के बाद। अल्लाह ने ये रिफ्लेक्शन रखा है सीनों के अंदर, वो हमारा सीना एकदम अच्छी चीज़ को खींच लेता है। तो शर और बुराई दोनों हमारे अंदर मौजूद हैं, याद रखें। इसी तरह मकरंद से बुराई को खींच लेता है और बुराई को बड़ी जल्दी खींचते। तब क्या है कि हमें हर हालत में कोशिश करनी चाहिए कि वो गैर शरी जगह हो, जहाँ बुरी बातें हों। बुरी बातों से मुराद ये है बगैर शरी, चाहे उसको मज़हब का नाम दिया जाए कि जी हम तो इसलिए मुनक़द कर रहे हैं, कोई मज़हब का नाम दे दिया जाए, कोई दीन का नाम दे दिया जाए, हकीकत में वह गैर शरी चीज़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ चीज़ है, तो वो भी बुरी मजलिस है। ये भी याद रखना, वो भी बुरी मजलिस है, क्योंकि वो कुरान जहाँ पढ़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है, वो भी गैर शरी तौर पर अदा की जा रही है चीज़, तो उससे बचा दें। क्योंकि चीज़ तो ये है कि शरीयत के ख़िलाफ़ चीज़ है, गलत है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो उसको कभी ना समझेगी इसमें सवाब मिले, असर पड़ जाएगा उसका। और असर ऐसा पड़ता है कि आदमी जो है वो अपने अमालों को ज़ाया कर देता है, अपनी मेहनत को ज़ाया कर देता है, किसी मुकाम का। बल्कि हकीकत तो ये है कि इंसान शैतान जैसा बन जाता है किसी मुकाम पे हो। मुझे एक वाकई याद आ रहा है, दसरत समरकंदी रहमतुल्लाह ने ये वाक़ा लिखा है, मेरे शेख हदीस नबी का रहमतुल्लाह ने इसको बयान किया है। देखें किस तरह असर होता है। फरमाते हैं कि भाई एक पिछले ज़माने की बात है, कोई बुज़ुर्ग थे, नेक इंसान थे, तो उनको शैतान नज़र आ गया, शैतानों को देख लिया। हम ठीक है, अभी तो शैतान उसके पास गए, बातचीत की, कहते कौन है जी, मैं फला आदमी शैतान का, आपको मैं शैतान हूँ जी, इबलीस हूँ। कहते मैं तो बहुत दिन से आपको ढूंढ रहा था, उन्होंने कहा शैतान भाई मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, आप तो थे नेक आदमी साला आदमी शैतान। हंसने लगा, कहते जी मजाक कर, कहते नहीं यार मुझे बड़ा सख्त काम है आपसे भाई, तो अच्छा मुलाकात तेरे से होगी यार, बड़ा मेरे पे काम फंसाया, वो काम मेरा तो पूरा कर। शैतान क्या ये आदमी तो ऊंचा है, क्योंकि एक बड़े आदमी को फिसाल दूंगा, उसके पीछे जितने भी वो सारे जाएंगे, फिर बहुत अच्छा गाग मेरे हाथ आ रहा है, किसी बड़े आदमी को जल्दी पकड़ता है। याद रख, अल्लाह ने आपको दर्जा दे दिया कि लोग आपकी बात सुनते हैं, या आपके पीछे चलते हैं, या आपके मजलिसों में बैठते हैं, या आपके आवाज़ को सुनते हैं, उसको तो सब बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है किसी तबलीग में। क्यों कि उसके अगर आदत बात से कोई गलत चीज निकाल दी तो पूरा मजमा उसको मान जाएगा, वो सारा गुनाह किस पे जाएगा, उस आदमी में जाएगा। जी हमने तो उससे सुनी है बात, पर बड़ा नेक आदमी है जनाब, हम तो उसकी मजलिस में गए थे, हमने तो उसका आवाज़ सुना था। हज़रत रहमतुल्लाह ने ताकीद फरमाई थी कि देख लेना, कोई बड़ा आवाज हो, कोई बड़ी मजलिस हो, कोई ऐसी चीज हो, उस पर मत जा रहा था, शरीयत को देखना, उसमें एहतियात करना। तो उसने कहा जी अच्छा, तो फरमाए हुक्म दे मुझे, मैं हाजिर हूँ, मुझसे आपको काम है, मैं तो आपके काम सारे निपटाऊँ, बताएं। उसने यह बात ये है भाई शैतान, मैं तो तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं क्या बात है, उसने कहा ये क्या बात है यार, कोई तरकीब बता, मैं तेरे जैसा हो जाऊँ बिल्कुल। उसने सोचा कि यार आदमी समझदार है, देख बात भी अजीब कर रहा है। तो शैतान ने एक मिनट देर नहीं लगाई, उसने कहा आप सही कह रहे हैं, आप ऐसा आप जैसे आदमी है ये क्या आप कह रहे हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी देखा, पहली दफा देख रहा हूँ कि उसकी ये ख्वाहिश हो। मैं तो अदल से काम कर रहा हूँ और आज तक ऐसा आदमी मुझे कोई नहीं मिला जो कहते मुझे अपने जैसा बना लो। मैं तो बड़े मुश्किल से घाक पकड़ता हूँ और लोगों को घसीटता हूँ। अच्छा ये भाई सुनने वाली बात है, गौर से सुनना है, बड़ी कीमती चीज़ है जो बता रहा हूँ आपको। हम घर तक भी पहुँचें इस बात को और अपने माहौल को भी देखें आप। उसने कहा ठीक है मेरे जैसे ही बनना है तो ये बहुत बड़ी बात आपने की है, बना देता हूँ, देर नहीं लगाना, देखें आप वो कितने बड़े बुजुर्ग, क्या मुकाम, क्या कुछ। उसने कहा किस्सा छोड़ें, आपको भी एक मिनट में कर दूंगा टैट बिल्कुल। किस्सा करें जी, क्या क्या करूँ मैं, कहते दो काम बताता हूँ तुम्हें, बस दो काम तुम करो तो तुम मतलब गुनाहगार नहीं, मेरे जैसे हो जाओगे जैसे मैं हूँ। बताओ उसमें शैतान में क्या क्या सिफत है, क्या क्या चीज़ है। कोई गुनाह ऐसा नहीं, जितने गुनाह निकलते हैं उसी से निकलते हैं शैतान। तो बताओ क्या क्या उस चीज़ है, उस जैसा बन जाए आदमी, उस जैसा बन जाए। सोचने वाली बात है, तो बाकी रहा क्या होगा फिर। सिर्फ कहता दो बातें, दो बातें कर ले, अभी आपको बिल्कुल मेरे जाशीन जानशीन बनेंगे, मेरे जैसे बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि दो बातें अल्लाह ताला हमारे में पैदा ना करें। बोले आमीन जोर से। बताएं मुझे दो बातें हमारे में हुई, अब अगर हम ये बात सुन लें और हुई तो मुझे बताएं हम क्या होंगे। अब कहाँ गए हमारे नमाजें, कहाँ गए हमारे जिक्र, कहाँ गए हमारे कुरान, कहाँ गई तिलावतें। हम तो गलती में जब आंख मरते आदमी तो अल्लाह ताला कहता है ये तो तू ही था, तू ये काम किया जो शैतान बन जाता है, जैसे इंसान शैतान जैसा बन जाता है तू ये काम करता रहा। बताओ सर कैसे इंसान बच सकता है। तो ये दो बातें गौर से सुन लेनी चाहिए दोस्तों, और सुन के इसको तो इतना पक्का हो गया, आज वादा कर लें कि इंशाल्लाह जिंदगी में ये दो बातें नहीं होंगी। मैंने गए काम से बिल्कुल भूल जाएंगे जितने अमल हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं। उसने कहा आप जल्दी बताओ भाई, मैं तो बड़ा ममनून हूँ आपके, दो बातें मुझे बता दें। कहते तो आज नज़दीक में बताता हूँ, बैत हो जाओ मेरे हाथ पर। शेख बैत नहीं करता, वो बैत करा रहा है उसको, आ जा भाई मेरे हाथ पे तौबा कर तू, मैं तुझे अपना जानशीन बनाता हूँ, मेरे जैसा होगा बिल्कुल, मेरे जैसे काम करेगा सारे। उन्हें बताएं जी क्या करना है मुझे, दो काम। कहते पहला काम तो ये करो कि नमाज में सुस्ती करो। अल्लाह क्या करना है, नमाज में छोड़ना नहीं है, यानी शैतान की ट्रिक देखे, छोड़ने की बात ही नहीं। उसने कहा सिर्फ तुमने क्या करना है, नमाज में सुस्ती करनी है। क्या जी भाई सुस्ती हो गई, मैं जाना तो था जी फजर पे, सुस्ती हो गई, असर पे जाना था यार, बस क्या करें, बैठे थे बातें करते रहे, सुस्ती हो गई। मगे पे यार फोन आ गया, फोन करते करते ऐसे हुआ कि मुझे सुस्ती आ गई, यार खाना खाने में देर होगी, मैं मुझे सुस्ती आ गई। करके बड़े बड़े दीनी काम आते हैं, अभी जिक्र करके आए, रात को भी जिक्र किया है, तहज्जुद भी पड़ी है, बड़े दिन से तबलीग करके भी वापस आया। और ये अक्सर होता है, मैं सही बता रहा हूं आपको कि जब इंसान हज करके आएंगे ना लोग, अब आप देखिएगा कि पहले अच्छी नमाजें होंगी, हज के बाद आएंगे नमाज कमजोर हो जाएगी। देखा शैतान उसको बता, उसे बता दी फिर कि क्या होता है हज करके आता है आदमी, जहमत बस यार सर हज करके आए, तवाफ किए, इतना वो कुछ किया है, चलो यार आज घर ही पढ़ लेते नमाज। अक्सर हो जाता है, हम तबलीग से आते हैं, अक्सर होता है कि क्योंकि टाइल्स लगा के आए दिन, अभी चलो यार आज घर ही पढ़ लेते हैं, भी बच्चे भी हैं कुछ तो काम लगा लेते हैं। किसी बड़े काम से गए ذکرگار کی مجلس میں گئے, شیخ کی مجلس میں گئے, تو وہاں سستی ہو کیا جی, اب تو اتنے دن لگا دیے ہم نے ذکر شکار کیا تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں, تو ذکر کے تو یہ انعامات آ رہے ہیں بھائی, ذکر کر لو تو فلاں ہو جاتا ہے. تو جتنے آدمی اعمال مستند کر کے آتا ہے اسی طریقے سے شیطان جو اس کو نیچے دلا سارا حج کا کیا کرا ہے پانی میں ڈال دے. ایک نماز چھوڑنا. اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو سستی کی بات ہے جو اس نے پہلی بات بتائی ہے, وہ کیسے اس سستی پہ انسان کیا ہوتا ہے, صرف گناہ گار ہی نہیں بلکہ گناہوں کا مجمع بن جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے, لیکن اس کو احساس نہیں آنے دیتا شیطان. سب سے زیادہ وہ زور جو انسان پہ لگاتا ہے میرے بھائیو, سب سے زیادہ جو اس کا زور ہے انسان کو برباد کرنے کا, وہ نماز ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, اس عاجز نے ایک دفعہ شیطان کو دیکھا, پہلی شے بتایا, لنڈن ماسک میں نماز پڑھتا تھا, بالکل آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بھائیو کہ وہ ایک شیطان ہے, آج تک اس کی شکل کے سامنے ایک شیطان ہے, اور میں خدا کی قسم بتا نہیں سکتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے, سب میں جاننے والے لوگ جو جاتے تھے مسجد میں وہی ہیں, کس طریقے سے ان کو پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے, اور کتنا زور لگا رہا ہے وہ, کہ میں تو دنگ ہو کے دیکھتا رہا اس کو کہ یار یہ اس طرح انسان کو روکتا ہے. 15 منٹ میں نے اس کا نظارہ دیکھا ہے, اندر تک یعنی اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد سے بھی انسان کو واپس لے جائے, ادھر سے کوئی نکل رہا ہے ادھر سے کوئی نکل رہا ہے جان چھڑا کے اس سے, لیکن وہ بالکل مایوس نہیں ہو رہا, چپھی ڈال رہے لوگوں کو, پتہ کون ہے کیا کیا پھونک رہا ہے کیا کیا بتا رہا ہے, آواز تو مجھے اس کی نہیں آ رہی کیا باتیں کر رہا ہے, لیکن میں 15 منٹ تک اس کے دیکھتا رہا, میں یار یہ شیطان یہ کیا کام کر رہا ہے. لمبا خواب تھا, اب آگے تو بہت کچھ تھا, تو اب حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی ایک بات جو دوستو یاد رکھنا, کتنے بڑا تزکیہ کریں آپ جو بھی کریں, کتنے بڑے منازل پہ پہنچ جائیں, کتنے بڑے رتبے آ جائیں, اللہ کی طرف سے بشارتیں آ جائیں کہ تم بھائی غوث بن گئے ہو کتب بن گئے ہو, ایک بات یاد رکھنا کہ نماز کے معاملے میں بالکل بد احتیاطی نہ کرو. جی میں آپ بالکل بد احتیاطی نماز میں نہ ہو, سوائے اس کے کہ جو عذر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اس عذر پہ آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ کوئی بھی عمل ہمارا کام نہیں آتا نماز کے مقابلے میں. سزا کتنی بڑی ہے سستی پر چھوڑنے کو, تو اللہ معاف فرمائے نماز ہمارے چھوٹے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہمارے پہ کہ ہماری موت اس حالت میں کہ ہماری نماز چھوٹ جائیں. تو یہ معاملہ جو ہے تو سستی کا ہے. اب ذرا ہم اپنے گھروں کے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, عورتوں کو دیکھیں, گھر والوں کو دیکھیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے نماز کے بارے میں, حیثیت کیا ہے نماز کی, رکعت کیا ہے ہمارے نماز کی, ہمارے گھروں کی سستی تو درکنار وہاں تو ہے ہی نہیں. تو جہاں نماز ہے ہی نہیں سستی پہ وہ انسان شیطان کا گولا بنا ہوتا ہے, یعنی پورے عیب اس لڑکی میں اس لڑکے اندر گھس چکے ہوتے ہیں جو شیطان کے اندر ہے, تو کہاں اس میں ادب آئے گا, کہاں اس کو برائی کا پتہ چلے گا, کہاں وہ کس چیز سے بچے گا, کہاں وہ کسی رشتے قبول کرے گا, کہاں وہ باپ کی بات سنے گا, کہاں وہ ماں کی بات سنے گا, وہ تو شیطان کی ساری صفتیں اس کے اندر آ چکی, ایک کے بعد ایک برائی کرنی, دو کے بعد دو برائی کرنی ہے, بے حیائی سب کچھ اس میں آ چکا ہے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے شیطان میرے جیسا بن چکا تھا انسان. تو سب سے پہلے انسان جو زور لگائے اپنے گھر والوں پر, اپنے آپ پر, اپنے وجود پر, وہ کس چیز کا لگانا ہے. اور یہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکر اذکار یہ مقصود نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے, اس ذکر سے اپنے اندر جوش اور قوت نورانی پیدا کر کے اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے, یہ مقصد ہے نماز ذکر کا. نماز کی کئی سٹیجز ہیں, سب سے پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ نماز پڑھے آدمی, پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ راکعون سجدوں والوں کے ساتھ جا کے سجدہ کرو, مسجد میں جا کرو, پھر مسجد میں آنے کے بعد بھی جو نماز کی سٹیجز ہیں اس کو حاصل کرنا ہے, تکبیر اولو تک آنا انسان, پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے نماز کی, سبحان اللہ بولے, سو رہے ہیں کہ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کی تعریف تو کرنی چاہیے نہیں ہے, उसके बाद भी अगली स्टेज है, ये नहीं कि हमने नमाज शुरू कर दी तो अल्लाह कहता है मुंह पे मारूंगा बहुत सी नमाजों को। हमें सोचना चाहिए कि मेरी जो नमाज है अभी इस हालत में है वो मुंह पे मारी जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अमल के बारे में कभी खुशकिस्मत ना होना, अपने आप खुशफहमी में ना आना। नेगेटिव सोचेंगे तो अमल पे आप कुवत करेंगे और जोश करेंगे और हिम्मत करेंगे। हमने सोचा नहीं जी बस हम तो नमाजी हैं, नहीं, नमाज की वो हासिल करने है जो कुरान ने हमें बताया, खाशीन। तो इस खाशीन तक पहुंचने के लिए जो स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं कि इंसान अपने अंदर को मजबूत करे, जिसके अंदर मुसफ़ा होगा, साफ होगा, गुनाहों से बचेगा, तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा उस पर किस चीज़ पे पड़ेगा, बुजुर्गी कहाँ से मिलेगी, उसके सिजदों में पता चलेगा, उसके रुकू में पता चलेगा, उसके क़याम में लुत्फ होगा, नमाजों से रग़बत हो जाएगी, सफ़ों में भागता चला जाएगा, उसकी ज़िंदगी का पैमान सोएगा भी उसको मस्जिदें नजर आएंगी, ख्वाब में वो नमाजों में जाता नजर आएगा, ख्वाब में उसका खाना काबा नजर आएगा, वहां की अजानें सुनाई देंगी, आते नहीं लोगों आते जहां सोया अजान अजान की आवाज आ रही है। बाज होता है बाज तो ख्वाब ऐसे आते हैं इंसान को कि उसके उठता पसीना, क्यों कि ऐसा लगता है कि मैं नमाज पे जा रहा था, नमाज की जमात निकल गई और मैं बड़ा परेशान हूं, जमात कैसे करूं, तो ख्वाब आ रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। तो इस कदर अंदर चली जाए नमाज वो किस्ता जाएगी कि जैसे जैसे जिक्र के साथ अपने अंदर को हम साफ करते चले जाएंगे। अल्लाह वालों के पास जाने का मतलब, तौबा करने का मतलब, क्योंकि ये तो बता दिया गया कुरान में हदीस में कि अंदर जो है आपका किसी चीज से भी साफ नहीं होगा, किसी चीज से अंदर में नूरानियत जो आएगी वो किस चीज से आएगी, उस नूरानियत का किस अमल से पता चलेगा, ऊंचा बोले है नहीं बता, ऊंचा बोले नमाज, एक आदमी बोल रहे नमाज, बस क्या आंख नहीं खुली, बस ये सुस्ती होगी, फला होगी, बेशक कितने मुकामात पे पहुंच चुका है या शेख ने कितने असबाब को कोई ताल्लुक नहीं, इंसान पहचाना जाता है उसके अमल से, एक्शन से। हम तो 40 साल से जिक्र कर रहे हैं, हम तो 50 साल से बैठे हुए हैं जी, हमने तो शक्लें ऐसी बना ली हैं, हम फला कर लिए, नमाज को देखो ठोंगे मार रहे हैं, इधर भाग रहा है, इधर देख रहा है, फिर मैं कह नमाज के स्टेजेस हैं, असल से अल्लाह ताला ने जो बताई नमाज की ये है कि तू सिजदा करे तो ऐसा हो सुभान अल्लाह कि तू मुझे देख रहा है, सुभान अल्लाह, ये है नमाज। कोई को अच्छा चलो हम नहीं पोजिशन पहुंचते, अल्लाह कहेगा ठीक है नहीं पहुंचे, लेकिन अल्लाह एक सवाल करेगा कि तूने इस पे कोशिश की थी, बोले सुभान अल्लाह, मत क्या जवाब देंगे आप, नमनू पर नमाजें फेंकी जाएंगी, अल्लाह हम तो नमाज पढ़ते रहे, कहता तुझे मैं जी तो नमाज ही नहीं, मैं तो नमाज में कहा था कि तू मुझे देख रहा है, महराज है, बताए कि नमाज लिया तू मेरे सामने ऐसी जो मैंने तुझे गई थी, कोई माँ का लाल लेके आएगा। तो अल्लाह बोला अजीब बात की, आरफी रहमतुल्लाह ने थानवी रहमतुल्लाह के जो खलीफा अजल गुजरे हैं, बड़ी प्यारी बात उनकी, अल्लाह वालों की बातें बड़ी अजीब होती उनको, सबको कहता भाई अल्लाह ने तो कह दिया कि नमाज ले आओ, वो नमाज ला के दो मुझे तुमने जिसमें खशियत है, और कौन इंसान है जो खशियत की नमाज पेश कर दे आज के जमाने में, लेकिन तुम एक बात तो कह सकते हो अल्लाह से, उसकी तो रहमत बुलंद है, क्या बात की उन्होंने सुभान अल्लाह, कहते एक बात तो कह सकते हो, क्या वो बात वो कह सकता है जो तुम आज करो, वो क्या जी, कहते तुम अगर इस बात पे कोशिश करो कि मेरी नमाज वो बन जाए जिसमें खशियत आ जाए, तो तुम अल्लाह के दरबार में कल ये कहोगे अल्लाह ताला हम तो कोशिश करते रहे हम क्या करें, बोले सुभान अल्लाह। कोशिश करने वाले तो लोग हैं जो जिक्र असकार करते हैं, जब कोई कोशिश ही नजर नहीं आ रही, जो एक तरीका बताया है कि जब मकान जो बनाना है आपने तो मकान के लिए आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, मस्जिद आपने बनाना है मस्जिद के लिए आपकी ये कोशिश करनी पड़ेगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर खशियत वाली नमाज बनानी है तो उसके लिए तुम्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी, उस कोशिश को हम करना शुरू कर दें, अब हम नमाज में खशियत आए या ना आए लेकिन अल्लाह के दरबार में हम पेश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हम तो कोशिश करते रहे हम क्या करें, बोले सुभान। तो कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात है, जो तरीका इसका कोशिश का तरीका बताया यही का अंतर, तस्किया करो सफाई करो जिक्र अस्कार के साथ, बात ना समझ आ रही है मेरे नहीं आ रही, ये मतलब था। तो ये इतनी जबरदस्त चीज है, या तो हम शैतान के गोले हैं बिल्कुल शैतान बने बैठे, इधर से निकले ये गुना कर लिए, उधर से निकले ये गुना कर लिए, इधर सीख करने बनाया, पता चलता है कि हमारी नमाज में सुस्ती हो रही है, नमाज हमारी सही नहीं है, तभी हम शैतान बने हैं, वरना जो हमारी शक्ल हैं सूरतें हैं जिसमें है ये सब कुछ है उसके बाद हमारे से गुना क्यों होते हैं, ठीक है। दूसरी बात बता भी शैतान, पूछता हाँ भी तो बड़ी काम की बात तूने बताई, हाँ जी तो अभी करता हूँ तेरे हाथ पे तौबा, दूसरी तो बता, दूसरी सुन ले। उसने क्या है दूसरी बात इसके साथ एक और बता दो, बातें काफी है, सारे गुनाह करेगा खुल के करेगा भी कराएगा भी लोगों को, दूसरी बात क्या, अल्लाह कहते झूठ बोला कर, झूठ बोलने में कसम भी उठाने पड़े और पक्का हो जाएगा तो बोले अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह। आज हम मुसलमानों को यह हाल है, टेलीफोन है और कहते जी घर नहीं है, या बस अभी आया, आज मैं आपसे वादा कल आपको मैं दे दूंगा, आज पैसे आपको दे दूंगा जी, पैसे ही नहीं है कहाँ देंगे, हमारे तो दुकान जाना है नहीं। और बड़े से बड़ा कारोबार पे खड़े मांगने वाला आ गया है ही नहीं, क्या करें, हम तो दे नहीं सकते, पैसा हमारे पास है नहीं है, कसम जी कसम उठा लो, हम तो बड़ा मुश्किल में है पास। हर इंसान झूठ को ऐसे लपेटता है जैसे कि वो हलवा पूरियां खा रहा है और काम सारे करता है, वो जी बड़ा माशा नेक आदमी है सब कुछ हो रहे हैं जितना कर लो, डांस उससे करा लो। अच्छा जब ऐसे क्या होता है, जब वो शैतान बन चुका होता है तो सब कुछ करने के बाद नमाज पढ़ रहा है सब कुछ कर रहा है आगे पीछे डांस भी कर लेगा गाने भी गा लेगा, लोग भी हैरान होंगे कौन सा काम आदमी ये क्या कर रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। पता है क्या चला उसके अमल ऐसे, वो शैतान है अपना जैसा बना लेते, कहते हैं अगर झूठ बोलने में कसमें खानी पड़े परवाह ना करना, ठीक आगे कसमें खा, देख मैं तुझे अपने जैसा कैसे बना देता हूं, अल्लाह माफ कमाए इस हालत में इंसान की मौत आ जाएगी, जो शैतान है बना हुआ शैतान है वो, उसके क्या हाल होगा भाई, हम ये बनावटी दिन नहीं चलता दोस्तों, बनावटी दिन नहीं चलता जी साहब, दीन को सच्चा अख्तियार करो। तो जब उन्होंने ये दो बातें सुन ली, वो तो अल्लाह वाले थे ना, क्या तेरी कैसी की तैसी, आज अल्लाह से तूने तो सही बात कर दी, अब कसम खाता हूं आंदा ये दो काम नहीं करने मैंने, सुभान अल्लाह शैतान तो जहां चक्कर खा गया, तेरी ऐसी कहता आज तक मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, बोले सुभान अल्लाह अल्लाह वाले देख कैसे धोखा देते हैं, आज तक मुझे चक्कर नहीं दिया, ये तो रास की ऐसी बात तुम मुझसे निकला के ले गया है कि जिसका तो सारी जिंदगी मुझे पछतावा होगा, मैं भी कसम खाता हूं आज रब की आंदा इंसान पे कभी एतबार नहीं करूंगा, किसी अल्लाह वाले पे एतबार नहीं करूंगा, ये बड़े चक्करबाज लोग होते हैं, अल्लाह कहते क्या मुझसे राज निकाल के ले गया, तो मेरे भाई कैसा खूबसूरत राज हमारे पास आया, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल करे, समर समी रहमतुल्लाह जिन्होंने ये बात हम तक पहुंचाई, ये दो बातें अगर हम मजबूती से पकड़ लें और आने ना दें अपने अंदर, नंबर एक क्या है छोड़ने को तो सवाल ही पैदा होता, नमाज में बीमार हो गए तो और बात है, ऐसी हालत होगी तो और बात है, कोई शरी मजबूरी आ गई तो वो और बात है, वो शरी मजबूरी खुद नहीं ये तो है, एक आदमी जनाब नमाज पढ़ रहा उसका कोई हाल हुआ, भाई क्या कर रहे नहीं जी ऐसे तो ऐसा कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं ये तूने खुद फतवा ले लिया है किसी आलिम से पूछा है, नहीं जी यहाँ मजबूरी थी तो कर सकते हैं, कुछ अपने ले ली फतवे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, पर यहाँ खड़े होकर पढ़ सकते, किसी आलिम से पूछा उलमा कराम से जाके बात की नहीं, खुद फतवा मार लिया, ये सब चीजें जो है ये दीन नहीं बनता इस चीजों से मेरे भाई, ये दीन अल्लाह का दीन है, वो शरी उजर जो है हकीकत में जो बताया गया है ये शरी उजर ये है जिससे आप नमाज जमात से छोड़ सकते हैं नहीं जा सकते, लेकिन सुभानअल्लाह बाद लोग तो ऐसे होते हैं कि उस पर भी कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं, हतनगान की कोशिश होती है यानी कि छूट पड़ी है उनको लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं लाके, उसमें कोई फर्क नहीं है क्या वो नमाज को ना जा सकें, अल्लाह ने को छूट दी है अभी शरी उजर है उनके पास। तो नंबर एक हमने शैतान नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना, गुनाह के नंबर दो हमने लोगों को बचाना है, ये भी बात है ना, अब ये बात पहुंचानी है ना कि देखो भाई ये गुनाह नहीं है, तुम शैतान बन जाओगे और शैतान के अंदर जो खबासत हैं ये एक गुनाह नहीं हजारों गुनाह तुम्हें खींच लेगी, ये नमाज सुस्ती वाली नमाज कहीं से कहीं पहुंचा देगी तुम्हारी ऐसी की तसी कर देगी, घर के अंदर देखें बच्चों को देखें वैसे हम उनको डांट के डबट के डंडों से ये सही नहीं होंगे। अगर किसी को सही करना है तो सबसे पहले उसके क्या करना चाहिए, नमाज को सही करें। डंडी ना मारे, नहीं ये बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, नहीं ये कर लेगा जी कौन है किसने पता लग रहा है। आज यही करते हैं, यही करते हैं, अच्छा खासा इग्नोर करते हैं। खुदा की कसम आप खुद अपने बच्चों को शैतान बना रहे, खुद बच्चों को शैतान बना रहे, कल पता लग जाएगा उसका हिसाब क्या होगा। अल्लाह के दीन के मुताबिक हमने अगर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, उसके जो असरात हैं मौजूद होंगे, फिर रोना किस चीज का। जो कल आपके मुंह पे थप्पड़ मारे, कल आपको गाली दे, आपके सामने वो बेहयाई करे ऐसी कि जिसकी आंख खुल जाए आदमी की, यार ये क्या कर रही है, कर रहा है, फुल्ली बेहयाई कर जाए इंसान, तो वो तो शैतान है, वो तो पक्का शैतान, उसने क्या किया। तो फिर क्या करेंगे, आज तो बड़ा गुस्सा आता है अगर कह दिया जाए यार अपने बेटे को देख भाई क्या करे, और जी अपना काम करें आप, यूनिवर्सिटी ना जाए, कॉलेज ना जाए, फला काम ना करें, तो कौन रोकता है उन चीज़ों से। हम तो ये कहते हैं कि नमाज जो है उसकी पक्की हो जाए, और वो भी उसका ही फायदा है, नमाज अपनी सही करे, छोड़े ना किसी हालत में जैसे भी है। और फिर नमाज के बाद ये भी याद रखें कि नमाज पर हमने क्या करनी है, अभी क्या बताया था, नमाज पढ़ने तक नहीं जाना है, हमने नमाज को कबूल कराना अल्लाह तक, तो हमने ये नमाज पेश करनी है जिसपे हमें जन्नत मिलेगी। सारे इनामात जो जन्नत के मिलने हैं किस पर मिलने हैं, सजूद और क़याम पर मिलने हैं। कुरान भी उसमें है, याद रखें, तारीफ भी उसमें है, जिक्र भी उसमें है, सब कुछ अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर बंद करके रख दिया। सारी इबादात का मजा है, स्टार्ट कहां से होती है, नमाज हज से शुरू होती है, याद रखें नमाज का स्टार्ट ही क्या है, हज कर रहे हैं नमाज में, कैसे कि जब मौज़िन आवाज मारता है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, यही आवाज हजरत इब्राहिम से करवाई थी अल्लाह ताला ने खाना काबा पे, आओ खाना काबे की तरफ, आओ खाना है ये नमाज का रंग। तो पहले ही रंग जो है हज से यहां से होते हैं, हाजी हजी क्या होगा उसका, कि जो कारखुन ने सुन सका जो पांच वक्त पुकारी जाती है, तो पांच वक्त अल्लाह ताला मौज़िन पुकार रहा है, इसलिए अजान देने वाले का जो दर्जा होगा रोजे क़यामत में उसका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़ी हादिसें आई हैं मौज़िन की अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो आवाजें मार रहे हैं। और याद रखें एक बात कि जो इंसान अजान देता है आंदा उसने नीयत क्या करनी है, सोच लें नीयत क्या रखे, जिस वक्त अजान पे जाए तो ये नीयत रखे कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था लोगों को बुलाने का, आज मैं भी अल्लाह के हुक्म से लोगों को दीन की तरफ नमाज तक बुला रहा हूं, और जिस तरह उनकी आवाज पूरी दुनिया में फैली, इंशाल्लाह मेरी आवाज भी पूरी दुनिया में जारी होगी। मुझे बोलने में तो आती है, हजरत जब नमाज देते हैं हमारे नाम भूल गए इनका, मुझे आती है, अगर ना आए तो जल्दी कैसे भागू, बोले सुभान अल्लाह। जब मैं तैयार हो रहता हूँ या खाना खा, मुझे ख्याल आता है यार नमाज का टाइम, कहीं अजान ना दे रहे हो, मेरा रूहानी कनेक्शन इनसे मिल जाता है, इस मस्जिद पे मैंने जाना है, बोले सुभान अल्लाह। ये रूहानी बात बता रहा कि मेरा रूहानी कनेक्शन इनसे मिल गया, अपना ज़करिया मस्जिद है ना, रंडल मस्जिद है ना, मक्की मस्जिद है, सारी मस्जिदें गायब हो गई, उस जो मस्जिद है उसकी अजान सिर्फ मेरे रूह में आएगी जो जहां मुझे जाना है। मौसी आवाज नहीं पहुंची, मौसी ये तो खड़े आवाज दे रहे हैं मुझे, तो हमेशा नियत ये करे अजान देने वाला आदमी, ये स्पीकरशिप पर से नहीं पहुंचती आवाज, सुभान अल्लाह। ये तो जो नमाजी होता है उसकी रूह में खुद उसकी आवाज पहुंच जाएगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई आदमी सफर कर रहा है वहां से और वो सोच रहा है पाकिस्तान चला गया, यार मैंने फजर की नमाज जाके मस्जिद आयशा में पढ़नी है और मस्जिद आयशा में नमाज होती है 6 बजे की, तो कसम खुदा की जिस वक्त सफर शुरू करेगा तो वहीं पर उसके सफर से पाकिस्तान में उसकी आवाज पहुंच जाएगी। इसकी इधर इसकी नियत है कि मैं दुनिया में लोगों को बुला रहा हूं, ये नहीं कि भाई यहां लोगों को बुला रहा हूं, किधर कहेगा, क्या नियत करेगा पहले कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज को पहुंचा रहा हूं, जहां मेरी आवाज पहुंच जाए फरिश्ते जिन्नात सबको सुना रहे हैं आप, और जितने रूहों में यह आवाज जारी है सारी आवाज मौज़िन को जाती है। मौज़िन को चाहिए गुनाह कम करे, शरीर की जिंदगी गुजारे। कितना बड़ा इनाम दिया, कितना बड़ा इनाम दिया मुझे बताया एक मौज़िन है या नहीं। अब यार क्या क्या बातें बताएं इसमें, एक ऐसे ऐसे नुकते हैं नमाज के अंदर कि अब बताना शुरू हो तो मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा चाहिए बताते बताते। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं नमाज के अंदर, सब कुछ ही नमाज में, एक ही नुक्ता आपको बताया कि हज से शुरू होती है नमाज, पहले सुना आपने ये बात, हज से शुरू होती है, पुकार से शुरू होती है। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको तौफीक दे कि ये चंद बातें जो हमने की हैं इस पर अमल करने की तौफीक दे। तो रिजल्ट क्या निकला कि हमने क्या बनना है, क्या बनना है, पक्का नमाजी। कौन सी नमाज पढ़नी है, जो अल्लाह के दरबार में हम पेश कर सके, उसके लिए हमने क्या करना है, मुझे बोला कोशिश, क्या करनी है कोशिश, और कोशिश का क्या तरीका है इस नमाज को सही करने का, मुझे बोला अल्लाह का जिक्र, क्या है अल्लाह का जिक्र, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से अंदर तकवीत पकड़ता है, नूर आता है, उस नूर का जो सबसे पहले असर पड़ता है किस पे पड़ता है, बात समझ आएगी क्यों करते हैं अल्लाह का जिक्र, इसलिए करते हैं। तो जिक्र पे जितना जोर लगाएंगे उसी कदर नमाज अच्छी होगी, जितनी नमाज अच्छी होगी जन्नत में उतने ही मुकाम बुलंद होंगे। बोले सुभान अल्लाह।